नमस्कार, ज़ीरोधा पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित है और इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हुए हम आज के एपिसोड में मिरे इंडिया म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर निलेश सुराना जी से बात करेंगे। उनसे हम ये जानेंगे कि मार्केट्स के हालात उनकी राय में अब कैसे हैं और इन हालातों में हमें क्या और क्या नहीं करना चाहिए। निलेश जी इंडिया के टॉप फंड मैनेजर्स में से एक हैं और उनके पास इंडियन स्टॉक मार्केट्स में पिछले 25 सालों का एक्सपीरियंस है। अब हम इस चर्चा को निलेश जी के साथ शुरू करते हैं। निलेश जी, सबसे पहले एक आम निवेशक के लिए जिसे समझ में नहीं आ रहा अभी बाजारों में हो क्या रहा है, उन्हें आप क्या कहेंगे, उन्हें आप क्या बताना चाहेंगे, वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे देखें और अभी करें क्या?
जी नहीं, आपका आपका कहना है बिल्कुल सही है। जो करेंट सिनेरियो है, ये एक थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस के बाद हुआ है, जो कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। सो स्वाभाविक है कि इन्वेस्टर्स थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। मार्केट में जो करेक्शन आया है ऑलमोस्ट 30% एक महीने में, वो काफी स्टीप है। ऐसे टाइम पे थोड़े इन्वेस्टमेंट के बुनियादी सिद्धांतों को और उनके जो अजम्पशंस को रिविजिट करना बहुत जरूरी है। बेसिकली ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा कोई संकट आया हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो कोरोना वायरस COVID-19 का है, ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म तक सीमित रहेगा। इसका इम्पैक्ट मोस्ट लाइकली शॉर्ट टर्म, जो लेट्स से विद इन अ ईयर तक सीमित रहेगा। और तो उस हिसाब से मार्केट में जो मार्केट को उस एंगल से देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट नहीं रहेगा। और दूसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है जो असेट एलोकेशन का, उसको बनाना वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट चीज जो फर्स्ट पॉइंट है कि लॉन्गर टर्म फंडामेंटल्स हैं इंडिया के, वो स्ट्रांग हैं। और जैसे पहले दूसरी क्राइसिस आई थी आज से 12 साल पहले, ग्लोबल क्राइसिस था, देयर आर वेरियस पॉइंट इन टाइम अलग अलग टाइप के शॉक्स इकोनॉमी में आए थे, चाहे ऑयल क्राइसिस हो या स्टार्टिंग फ्रॉम आईटी सेक्टर क्राइसिस, सॉर्ट ऑफ फॉल डाउन व्हिच हैपेंड। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ड्यूरिंग द क्राइसिस पैनिक रहा है, क्योंकि मार्केट जो है जनरली स्टॉक मार्केट में जो प्राइस रिएक्शन, देयर आर दो चीज रहती है, एक तो स्टॉक प्राइसेस और एक जो अंडरलाइंग वैल्यू ऑफ बिजनेस है। जो फर्स्ट पार्ट है, जो स्टॉक की जो प्राइसेस होती हैं, वो थोड़ा शॉर्ट टर्म इवेंट्स को ज्यादा वेटेज देती है।
करेक्ट करेक्ट।
एक जिसे बोलते हैं मायोपिक टाइप का रिएक्शन रहता है, कि डिस्प्रोपोर्शनली बोथ वेज व्हेन देयर आर पॉजिटिव आल्सो और जब नेगेटिव होते हैं। आज नेगेटिव सिनेरियो कोविड की वजह से है, तो उसकी वजह से जो रिएक्शन है वो बहुत वॉयलेंट है, वो बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट है। बट दीज आर ऑल शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट्स। और जो बिजनेस की जो वैल्यू होती है वो लॉन्गर टर्म अजम्पशंस पे डिपेंड करती है। जो हम जैसे बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जो बिजनेस में का जो लाइफ ऑफ द बिजनेस है, उसमें जो कैश जनरेशन रहेगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। उसमें एक साल का अर्निंग्स आगे पीछे होने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो डिस्कनेक्ट रहता है प्राइस और वैल्यू का, ये काफी ज्यादा हो जाता है इन करेंट क्राइसिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। सो इन्वेस्टर्स शुड लुक थ्रू दिस, हैव कॉन्फिडेंस कि लॉन्गर टर्म ये सिचुएशन लॉन्गर टर्म में नहीं ही रहेगी। एंड इनफैक्ट बिकॉज ये डिसलोकेशन हुआ है, प्राइस और वैल्यू में डिफरेंस काफी बढ़ गया है। आज वैल्यू ज्यादा है, प्राइस कम है, इसलिए उसका अपॉर्चुनिटी बना के एक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोर अलोकेशन इक्विटीज में जो अमाउंट नेक्स्ट 2-3 साल के लिए नहीं चाहिए, वो उसमें कॉन्फिडेंस से लगाना चाहिए।
तो निलेश जी, आप जो कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं होगा, एक जरूरी सवाल है जो बहुत जन सोच रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये हम आपसे पूछ ही लेते हैं। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दुनिया खत्म हो रही है, सब बेच के राशन इकट्ठा करके घर में बैठ जाना चाहिए। ऐसे अगर किसी का माइंडसेट हो आज, उन्हें आप किस तरह से गाइड करेंगे, उन्हें आप क्या बताएंगे? क्योंकि परेशानी तो है सबको और सोच भी कुछ लोग ऐसा रहे हैं।
नहीं, वो स्वाभाविक है सोचना। और आज जो क्राइसिस है इसमें इट विल नॉट बी राइट कि कोई या कोई भी आपको सही बता सकता है कि ये कब सॉल्व होगी, बट अगर आपने रीसेंट डेटा पॉइंट्स देखे हैं जो चाइना में हुआ है, कोरिया में हुआ है, तो ये जो कोविड वायरस का जो पिकिंग आउट होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, दैट्स पॉइंट नंबर वन. और जो काफी एक्सपर्ट्स हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 6-8 महीने, 1 साल के अंदर एक लॉन्गर टर्म सॉल्यूशन जो एक वैक्सीन के थ्रू होगा वो उसकी आने की भी संभावना है. सो कहने का मतलब ये है कि हर क्राइसिस का ड्यूरिंग द क्राइसिस प्रोग्नोसिस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, और सेम चीज अभी हो रही है. अब 2-3 चीज इम्पोर्टेंट है. एक तो अलॉन्ग विद द क्राइसिस ऑयल के दाम भी गिर गए हैं जो इंडिया के लिए पॉजिटिव है, और दूसरी चीज ये है कि ये क्राइसिस उस टाइम पे आई है जब इंडिया की ऐसा नहीं था कि इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही थी, अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छा था, तो एज इट इज मार्केट्स थोड़े रीजनेबल थे, उसके ऊपर ये क्राइसिस आया और काफी ज्यादा क्रैश हुआ है. सो ये गिवन द रिएक्शन ऑफ द स्टॉक्स, इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा जैसा आपने कहा कि स्वाभाविक है कि दे विल थिंक कि लॉसेस कम करें, बट दैट विल बी टोटली रॉन्ग. लॉन्गर टर्म कॉन्फिडेंस रखना काफी जरूरी है ऐसे मोमेंट पे.
तो पहले भी जैसे क्रैशेस जब होते थे 2008 में या 1 में या हर्षद मेहता के समय में, तो आपने देखा होगा कि हर क्रैश के टाइम कुछ ना कुछ चीजें अलग होती थी, कारण अलग होता था, मगर फंडामेंटली जिस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं वो एक जैसा रहता है मोस्टली. इस बार फिर भी देखा जाए तो चीजें कुछ गड़बड़ा गई हैं, अलग दिख रही हैं, काफी जल्दी बाजार गिर रहा है. इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं?
देखिए, इस बार जो एक आपने बोला कि हर क्राइसिस में जनरल रिएक्शन तो रहती है, उसके ओवर एंड अबाउ इस क्राइसिस में थोड़ा सा डिफरेंस यह दिख रहा है कि हमने देखा है कि मार्च के महीने में या लास्ट 1 महीने में एक टेक्निकल फैक्टर भी है कि FIA की सेलिंग काफी हुई है, विश्व में हुई है, अक्रॉस मार्केट्स हुई है, इमर्जिंग मार्केट्स में हुई है और इंडिया में हुई है. तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि जहां ऑलरेडी देर इज अ बिट ऑफ पैनिक, उसमें और ज्यादा कोई सेलिंग करे और इरेशनल सेलिंग हो जो ETF के थ्रू होती है, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, उसमें अगर रिडम्पशन आता है ग्लोबल और उसकी वजह से इंडियन मार्केट्स इंपैक्ट होते हैं और फोर्स्ड सेलिंग आती है, मशीन सेलिंग जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से थोड़ा ज्यादा गिरावट देखने को मिली है. एक वो डिफरेंस हो सकता है. बाकी बिकॉज इट्स ए हेल्थ क्राइसिस, बिकॉज इट्स ए न्यू वायरस, एक नई चीज है और लोगों को इतना जानकारी नहीं है, इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है, इसलिए उस घबराहट के कारण भी एक जो रिएक्शन है वो ज्यादा है. पर जैसे मैंने पहले बताया कि जनरली मार्केट्स में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जनरली जो शॉर्ट टर्म इवेंट्स होते हैं उसकी अहमियत ज्यादा रहती है और पीपल टेक्निकल फैक्टर्स इंक्लूडिंग उस पे ओवर रिएक्शन होती है. इसको ओवर रिएक्शन हाइपोथेसिस कहते हैं. ये पेंडुलम कभी बीच में नहीं रहता है, या तो वो एक्सेसिव एक साइड मूव करता है ग्रीड की तरफ, या एक तरफ मूव करता है फियर की तरफ. सो जो टुडे इट इज इन द सिनेरियो वेयर देयर इज एक्सेसिव पेसिमिज्म एंड फियर.
तो इसी सिनेरियो में जहां पे एक्सेसिव पेसिमिज्म है, फियर है, रिटेल जनता, छोटे निवेशक अभी आगे बढ़ के शेयर खरीद रहे हैं जैसे जैसे FIIs बेच रहे हैं. डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी शेयर खरीद रहे हैं, मगर देखा जा रहा है कि छोटे निवेशक काफी मात्रा में आगे आके शेयर ले रहे हैं, नए अकाउंट्स खोल रहे हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो एवरेज कर रहे हैं. कुछ एनालिस्ट आके टीवी पे ऐसा भी कहते हैं कि आप शेयर अभी लीजिए, कुछ 25% इन्वेस्ट करिए या फिर कुछ परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अभी करिए. अभी क्या सही समय होगा शेयर्स खरीदने का, यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर और भी थोड़े दिन रुक के देखना चाहिए?
देखिए, इसमें सबसे पहले तो इंडिविजुअल का एक एसेट एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, और उसमें अगर स्पेस है आपको शेयर्स लेने की, सो आज का जो समय है वो बिल्कुल सही समय है, एकदम इट्स एन एक्सीलेंट टाइम. क्योंकि जैसा मैंने बताया पहले कि जो प्राइस और वैल्यू में गैप है वो काफी बढ़ गया है. बिजनेसेस की वैल्यू उतनी नहीं गिरी है जितने स्टॉक के प्राइस, उनके बिजनेसेस के जो प्राइस हैं वो गिर गए हैं. सो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी ज्यादा हो गई है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं करना चाहिए और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी शुड बी पुट एट वर्क, प्रोवाइडेड आपके एसेट एलोकेशन में उतना गैप है जो आप इक्विटीज में डाल सकते हैं. इक्विटीज एक लॉन्गर टर्म एसेट क्लास है और इसमें वही पैसा डालना चाहिए जो आपको नियर टर्म में जरूरत नहीं हो. जो पैसा आपको नेक्स्ट 3-5 साल के लिए जरूरत नहीं पड़ती है वो एसेट हमको कमिट करना चाहिए इक्विटीज में, बिकॉज इसमें शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी रहती है पर लॉन्गर टर्म वो वैल्यू वॉलेटिलिटी कम होती है और रिटर्न सुपीरियर रहते हैं.
तो जैसे आपने एसेट एलोकेशन की बात की, अगर हम नए निवेशक हैं और इस शब्द का मतलब समझना चाहते हैं तो एक सामान्य साधारण रूप में आप इसे कैसे समझा पाएंगे?
देखिए, एसेट एलोकेशन में प्राइमरी तौर पे दो टाइप के एसेट्स होते हैं जो एक तो आपको फिक्स रिटर्न्स देते हैं, जैसे आपका फिक्स्ड इनकम हो गया या फिर रेंटल इनकम हो गई या किसी की सैलरी है या फिर जो बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आपको कैश फ्लो इनकम की श्योरिटी है और गारंटीड अमाउंट पर सेम टाइमिंग मालूम रहता है. इक्विटीज में निवेश करना इज लाइक पार्टिसिपेटिंग इन अ बिजनेस. आप किसी बिजनेस का एक पोर्शन ओन करते हैं तो उसमें जो बिजनेस की जैसे जैसे अर्निंग्स बढ़ती है वैसे वैसे उस बिजनेस की वैल्यू बढ़ती है. और शॉर्ट टर्म में बिकॉज देर इज नो सर्टिनिटी ऑफ अर्निंग अदर देन डिविडेंड इनकम, उसके जो प्राइसेस रहते हैं वो दूसरे फैक्टर्स से भी इम्पैक्ट होते हैं, इसलिए उसमें वॉलेटिलिटी रहती है. सो इट इज नॉट अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड फ्रॉम द इक्विटी यू डोंट गेट एनी रेगुलर इनकम ऑन अ बेसिस बट यू गेट एप्रिसिएशन इन द स्टॉक प्राइसेस.
तो जब आप एसेट एलोकेट कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और अपने हिसाब से आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लिया, तो अगर आज आपसे कोई पूछना चाहे कि गिवन हमारी बात ले लीजिए, हम 25 साल के हैं, हम अभी अगर 20 साल के लिए कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो ब्रॉड गाइडलाइंस आप क्या देंगे जिससे अभी विद द करंट सिनेरियो हम इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर पाए और एसेट एलोकेट करके करेक्टली अपना अच्छा पोर्टफोलियो बना पाए?
देखिए, ये थोड़ा सा साइंटिफिक रहता है, हर एक की जरूरत और इनकम नीड्स अलग रहती हैं, बट इन जनरल आपका जो अमाउंट है उसको आपको दो बकेट में डिवाइड करना चाहिए. एक तो जो पोर्शन जो आपका नेक्स्ट 3 इयर्स के जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके जो एक्सपेंसेस हैं, वो अमाउंट आपको उसकी उसके लिए जो आमदनी होनी चाहिए या जो कैश फ्लोज होना चाहिए वो फिक्स इनकम से आना चाहिए. और जो अमाउंट आपको नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए नहीं चाहिए, जो आप लॉन्गर टर्म आपकी आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, नेक्स्ट मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट नहीं है, वो अमाउंट आप इक्विटीज में डाल सकते हैं.
तो अगर कोई अपना पोर्टफोलियो अभी बना रहा है या फिर बहुत से लोग हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दिया होगा और इसी समय मानिए अगर किसी ने चालू किया और दे आर लुकिंग एट देयर पोर्टफोलियो, वो ये देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में उन्हें बहुत भारी नुकसान हो रहा है, इस हालात में जहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू करना तो बहुत आसान है ही मगर रोकना भी काफी आसान है. आप रातों रात सेल बटन दबाइए, अपने फंड के यूनिट्स रिडीम करिए और कल से बैंक में आपके पैसे आ गए और आप चाहें तो कभी इन्वेस्टमेंट ना करें. ऐसा किसी को करने से कुछ रोकता नहीं है जी. और उन्हें इस हालात में रोकने के लिए या फिर सुझाव देने के लिए या फिर गाइड करने के लिए क्या कोई डायरेक्शन आप दे सकते हैं जिस तरह से वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को देखें?
जैसा हम पहले डिस्कस कर रहे थे एसेट एलोकेशन, तो आप 3-5 फंड में इन्वेस्ट करके एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं. रहा सवाल आज के तारीख में रिडम्पशन या उस फंड को विड्रॉ करने का, इसमें एक लॉन्गर टर्म कॉल लेना जरूरी है. अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड का 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो एक रिटर्न प्रोफाइल बनी है लॉन्गर टर्म, ऑलमोस्ट 13-15% रिटर्न मिले हैं ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स, पर उसमें वॉलेटिलिटी बहुत रही है. और ऐसा भी देखा गया है कि जैसे जो पुरानी क्राइसिस थी, जैसे ग्लोबल क्राइसिस है, उस समय जिसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस समय आपको जब करते हैं तो रिटर्न्स बढ़ जाते हैं. उसका रीजन सिंपल है कि कि आज की तारीख में सबसे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. एक चीज तो कि ये क्राइसिस जो है ये शॉर्ट टर्म है, इट्स नॉट अ लॉन्गर टर्म क्राइसिस, ये पॉइंट नंबर वन ये है. दूसरा, इसकी वजह से जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो उनकी इंट्रेंसिक वैल्यू से काफी नीचे हैं. सो इसका मतलब है कि आपको कोई रुपए की चीज है वो 8 आने में या 12 आने में, यू आर गेटिंग अ डॉलर फॉर 70 सेंट्स. दैट इज द सिनेरियो. इफ दैट बी द केस, इट डजंट मेक सेंस टू विड्रॉ व्हेन द प्राइसेस आर मच लोअर देन व्हाट द वैल्यू इज. मेरे ख्याल से ये बेसिक रिविजिट करना बहुत जरूरी है कि प्राइसेस आर मच लोअर देन द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ मेनी बिजनेसेस. सेकेंड इज, दिस इज ओनली अ शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म इम्पैक्ट ऑफ द क्राइसिस, एंड लॉन्गर टर्म थिंग्स विल मीन रिवर्ट. जैसे बोलते हैं ना, जो नॉर्मलसी है वो आ जाएगी. अब वो 6 महीने में आती है या 12 महीने में आती है वो कहना बहुत मुश्किल है, बट इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली कि वो 2-3 साल में नहीं आती.
तो जैसे कि आपने ये प्राइस की बात की और वैल्यू की बात करी, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारी कंपनीज थी जो बैंकक्रप्ट हो गई, एंड इन सारे केसेस में देखा गया कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो भारी मात्रा में शेयर खरीद रहे थे. जो शेयर होल्डिंग थी कंपनी की मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथों में आ गई थी, और प्राइस गिरता गया, और ये संक कॉस्ट फैलेसी थी जो प्रॉबली इन्वेस्टर्स को ये सोचने को मजबूर कर देती थी कि वो एवरेज कर लें कॉस्ट को, प्राइस बढ़ जाएगा. इस हालात में वैल्यू ट्रैप भी होना थोड़ा आसान हो जाता है अगर सारी कंपनीज के शेयर गिर रहे हो. तो हाउ डज वन अवॉइड अ वैल्यू ट्रैप, कैसे उन शेयरों को ना खरीदें जहां पे, या फिर उन तरह के फंड्स में निवेश ना करें जो कुछ कंपनीज के शेयर लेके रखे हैं जिसमें हालात ठीक नहीं है.
जी नहीं, तो सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट करना अनलेस कोई इसी बिजनेस में है वो काफी डिफिकल्ट रहता है. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप जैसे एक्सपर्ट्स या फिर प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के ऊपर ट्रांसपेरेंट माध्यम है तो प्रोफेशनल्स को के थ्रू करें, वो बेस्ट रहेगा. और जहां तक स्टॉक में आपने जैसे बताया कई स्टॉक में एवरेजिंग की है या काफी लॉस हुआ है, उसमें जो एक बेसिक कंसेप्ट है स्टॉक सिलेक्शन का कि हमको अच्छे बिजनेस में जो कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट चला रहे हैं, अच्छे बिजनेस है जहां लॉन्जिविटी है, ग्रोथ है, और अप टू अ रीजनेबल प्राइस देना चाहिए. कई बार ये देखा गया है कि इन्वेस्टर सबसे सस्ती चीज ले लेता है, और कुछ एस्पेक्ट्स जो होते हैं बिजनेस के, जो बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं कि वैल्यू जनरेटिंग बिजनेस है, लॉन्जिविटी है, ग्रोथ है, वो कई बार इग्नोर कर देते हैं, या फिर वो जो मैनेजमेंट एनालिसिस है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिलेक्शन में, उसमें कई बार उसका जो मूल्यांकन करने में एरर्स हो जाती है. तो उसकी वजह से कई बार रिटेल इन्वेस्टर गलत शेयरों में, गलत बिजनेस में, या गलत सेट ऑफ मैनेजमेंट वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर लेते हैं, और उसके प्राइस गिरते जाते हैं और उसको एवरेज करते हैं. वो एक सही अप्रोच नहीं है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वेल्थ क्रिएशन में वो स्टॉक सिलेक्शन में बेसिकली 3 एस्पेक्ट हैं कि आपको सही बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए. आपको उन बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां का मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट हो और वैल्यूएशन फेवरेबल हो. जो पहले दो फैक्टर्स हैं उसमें अगर मिस्टेक हो जाती है तो डैमेज कैन बी सिग्निफिकेंट.
सो एज अ फॉलो अप ऑन दिस, ये एक सवाल है जो काफी श्रोता जो स्टॉक पिकर्स भी होंगे, हो सकता है सुन रहे हो, वो भी पूछना चाहेंगे आपसे कि मेरे ने फिनोमिनली अच्छा किया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस और एयूएम ग्रोथ, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो, ये एक ब्रीफ आउटलाइन आप बता पाएंगे शायद जो आप कह रहे थे अभी कि जिस कंपनी का मैनेजमेंट ठीक हो या फिर फंडामेंटल्स ठीक हो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन कोई एक आउटलाइन है जो मेरे की फिलॉसफी है जो आपने अपनाई हुई है और आपके लिए उसने बहुत अच्छे से काम किया है?
जी नहीं, इसमें हम लोग का एज अ इन्वेस्टमेंट हाउस एक अप्रोच जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी अप्रोच है उसमें डिसिप्लिन रहना चाहिए, उसको स्टिक करना चाहिए. हमारी अप्रोच है कि इसके दो भाग में मैं सॉर्ट ऑफ आंसर देता हूँ. एक तो स्टॉक सिलेक्शन की क्या अप्रोच है और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की क्या अप्रोच है. सो हमारा ओवरऑल अप्रोच है कि कोई भी बिजनेस ने उसमें क्वालिटी अप टू अ रीजनेबल प्राइस जिसे बोलते हैं, मतलब जो बिजनेस में है उसमें बिजनेस शुड बी है क्वालिटी बिजनेस. अभी क्वालिटी का मतलब है कि उसमें जो कुछ पैरामीटर्स रहते हैं ग्रोथ के, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के, लॉन्जिविटी के, वो रहना चाहिए. सेकंड जो मैनेजमेंट जो है, बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया स्टॉक खरीदना मतलब आप इट्स सिमिलर टू एज ए कि आपके एक बिजनेस का एक पोर्शन ले रहे हैं, बट वो बिजनेस कोई और चला रहा है, तो वो मैनेजमेंट का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है. उन मैनेजमेंट में जो इंटेलेक्ट है, एनर्जी है, कॉम्पिटेंस है, दैट इज एक्सट्रीमली
इम्पोर्टेंट.
एनालाइज करना, जी हाँ, उसको एनालाइज करना जरूरी है. और जो तीसरा फैक्टर स्टॉक सिलेक्शन में होता है वो वैल्यूएशन रिलेटेड होता है कि आपको एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए कि जो जो वैल्यू है वो स्टॉक प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए. स्टॉक प्राइस तो सबको मालूम है, वो तो डेली बेसिस पे दिखती है, पर जो वैल्यू का जो मूल्यांकन है वो स्टॉक से काफी ज्यादा होना चाहिए. उसका रीजन ये है कि कभी कभी सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, अजम्पशन चेंज हो जाते हैं, तो एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी होना चाहिए. जितनी ज्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी उतना कम रिस्क होगा. तो ये तो थोड़ा स्टॉक सिलेक्शन में जो फैक्टर्स हैं वो ये हम हमारी रिसर्च टीम कॉन्स्टेंटली एनालाइज करती हैं और मोर देन 300 कंपनीज को स्टडी करके उसकी एक वैल्यू निकालती है. और जो दूसरा एस्पेक्ट है फंड मैनेजमेंट का वो है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का. इसमें डिसिप्लिन और डाइवर्सिफिकेशन, ये दो चीज बहुत जरूरी है. जो एक डाइवर्सिफिकेशन हम लोग का जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट रहता है वो ऐसा रहता है कि कोई भी सेक्टर हो या स्टॉक का जो स्टाइल हो या पर्टिकुलर मैनेजमेंट ग्रुप हो वो शुड नॉट बी डिस्प्रोपोर्शनेट. रिस्क एडजस्टेड पोर्टफोलियो जरूरी है जो अक्रॉस सेक्टर, अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज रिप्रेजेंट करे. और द रीजन इज टू जनरेट अ रिस्क एडजस्टेड ऑप्टिमल रिटर्न, कोई बहुत ताकि कुछ भी अगर स्टॉक सिलेक्शन में कोई हो या तो पोर्टफोलियो में नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए. सो आई थिंक ओवरऑल आई थिंक जो क्वालिटी अप टू अ रीजनेबल प्राइस, उसमें दो चीज को अवॉइड करना जरूरी है. एक तो जो बिजनेस की क्वालिटी नहीं है, जो क्वालिटी ऑफ ग्रोथ, क्वालिटी ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या मैनेजमेंट रिलेटेड, तो उसको उस एरिया को तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए. और दूसरा एरिया होता है कि आपको कोई भी चीज की ऐसे बिजनेस को नहीं लेना चाहिए जिसकी वैल्यू और जो आप प्राइस ले रहे हैं उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं हो. आई थिंक अगर ये दो एक्सट्रीम अवॉइड करते हैं तो काफी सारे बिजनेसेस अवेलेबल रहते हैं जो जो लॉन्गर टर्म में ग्रो करते हैं और इकोनॉमिक वैल्यू ऐड करते हैं और ओवरऑल वेल्थ जनरेट करते हैं.
निलेश जी, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी और वैल्यू की बात की जाए तो बहुत लोग प्राइस अर्निंग्स के मल्टीपल को फॉलो करते हैं, देखते हैं. अभी जैसे कुछ 16-17 के आसपास होगा मार्केट्स में पीए का वैल्यू, जो प्राइस है सस्ता दिख रहा है शायद क्योंकि बहुत गिर गया है, लेकिन अर्निंग्स को क्या होगा ये कोई नहीं जानता है. इस हालात में आप कहाँ पे वैल्यू खोज रहे हैं और आपने मेट्रिक चेंज कर दिया है जिस तरह से आप कंपनीज को देख रहे हैं, पीए को आप क्या कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी?
नहीं, ये जो करंट पी मल्टीपल है ये काफी सस्ता है. इसके दो कारण और हैं. एक तो जो अर्निंग्स हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि कॉर्पोरेट इंडिया ऐसा नहीं था कि बिफोर दिस इवेंट ऑफ कोरोना वायरस की अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग थी या अबव नॉर्मल था. हमारा जो प्रॉफिट टू जीडीपी है वो लेस देन 3% है, मतलब ऑप्टिमल लेवल 4.5% होना चाहिए, तो इट इज लेस देन 3%. सो द अर्निंग्स जो डिनोमिनेटर है वो बिलो नॉर्मल है. एक तो वो ध्यान में रखना चाहिए और दूसरा प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. और इंटरेस्ट रेट इन द ग्लोबली इज लो, इन इंडिया इट इज लो, एंड विद दिस इवेंट, रिसेंट इवेंट, इंटरेस्ट रेट्स विल फर्दर कम डाउन. सो दोनों चीज को ध्यान में रखते हुए एंड द फैक्ट दैट कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल इम्प्रूव बिकॉज इट इज मच बिलो नॉर्मल ओवर द नेक्स्ट 3-5 ईयर्स, वी थिंक योर पी मल्टीपल है 16-17 का, इट्स अ क्वाइट रीजनेबल सॉर्ट ऑफ मल्टीपल. एज रिगार्ड्स टू जो आपने बोला है कि कहाँ पे वैल्यू दिख रही है, तो अभी जो मार्केट में लास्ट एक महीने में पर्टिकुलरली करेक्शन आया, उससे चॉइसेस बहुत बढ़ गई हैं. आई मीन अक्रॉस सेक्टर्स हमको अपॉर्चुनिटी दिख रही है. काफी सारे हाई क्वालिटी बिजनेसेस हैं वो भी रिसेंटली करेक्ट हुए हैं. एट द सेम टाइम काफी डीप इन वैल्यू बिजनेसेस हैं, गवर्नमेंट कंपनीज बोल लीजिए, काफी मोनोपोली कंपनी इन ऑल, दे आर अवेलेबल एट वेरी रीजनेबल वैल्यूएशन. बिकॉज सम ऑफ दीज बिजनेसेस, जो काफी सारे जो स्टॉक्स हैं, ये बिफोर कोरोना वायरस भी सस्ते थे, तो उसमें और कोटेशनल लॉसेस या करेक्शन आए हैं. सो ओवरऑल अप्रोच इज, आई मीन आज के मार्केट में पोस्ट द रिसेंट करेक्शन अपॉर्चुनिटीज काफी काफी बढ़ गई हैं.
तो अगर आपके फंड में कोई भी इंक्रीमेंटल पैसे आ रहे हैं, आप डिप्लॉय करने को भी तैयार हैं, यू नो कि आपको कहाँ कहाँ पैसे लगाने हैं, यू ऑलरेडी हैव प्लान्स फॉर दैट, आपको पता है एग्जैक्टली आपको.
डेफिनेटली डेफिनेटली फंड में एक एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो होता है, उसमें ही हम ज्यादा करके लगाते हैं. और मार्केट्स जब इस टाइप के हों, जो अभी जब ये वातावरण चल रहा है और जो करेक्शन आया है, हम लोग कैश लेवल ज्यादा नहीं रखते हैं. एट दिस मार्केट वी यूज द व्हाटएवर कैश इज देयर वी इन्वेस्ट.
निलेश जी, बिना किसी स्पेसिफिक्स के, एट अ ब्रॉड लेवल, दिस इज लाइक अ फॉलो अप ऑन आप जो कह रहे थे इन्वेस्टमेंट फिलोसफी के ऊपर ही, लेकिन आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट फिलोसफी किन फाउंडेशंस पे बेस्ड है? आपने कैसे पर्सनली इन्वेस्ट किया या फिर प्रोफेशनली किया, उसे आप किस तरह से देखते हैं, अगर वो शेयर कर पाएंगे?
देखिए, हर इंडिविजुअल की पर्सनल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी विल बी अ फंक्शन ऑफ एसेट एलोकेशन. जहां तक मेरे इंडिविजुअल का सवाल है, कि आई हैव ऑलवेज बीन इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज एंड द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड एंड आवर ओन फंड. सो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माय पर्सनल इन्वेस्टमेंट इज इन आवर ओन फंड्स.
अच्छा, सो दिस इज मोस्टली फॉर पीपल हु अगेन आर स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट्स राइट नाउ.
जी,
डर काफी है, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो समवॉट ग्रीडी, दे आर ओपनिंग देयर अकाउंट्स, दे आर वांटिंग टू इन्वेस्ट. जब कोई फंड वो डिसाइड करना चाह रहे हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो इस हालात में कैसे वो एक लार्ज कैप फंड या फिर एक स्मॉल कैप फंड या फिर डेट फंड में डिसाइड करें और कैसे अपने पैसे एलोकेट करें?
देखिए, आज के टाइम पे काफी सारे एक्सपर्ट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, आई मीन जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसको स्कैन करके द इम्पॉर्टेंट चीज, दो तीन चीजें हैं. एक तो जैसे ओवरऑल असेट एलोकेशन और जो म्यूचुअल फंड है, उसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाइवर्सिफाइड सेट ऑफ म्यूचुअल फंड्स बनाना चाहिए. समझो अराउंड 5 स्कीम्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए. द इम्पॉर्टेंट चीज है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए. सारी स्कीम एक सरी के नहीं होनी चाहिए. तो समझो आपने लार्ज कैप चूज किया है, मिड कैप चूज किया है, या डिफरेंट फंड हाउस या डिफरेंट फंड मैनेजर चूज किए हैं, और पोर्टफोलियो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए. नहीं तो वो भली आप 5 या 10 फंड ले लें, बट उसमें अगर डाइवर्सिफाइड नहीं होगा तो द पर्पस अचीव नहीं होगा. एक तो वो है. दूसरा, जो पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न देखना चाहिए कि गुड साइकिल, बैड साइकिल, ओवर नेक्स्ट लास्ट 5-10 इयर्स हाउ द फंड मैनेजर्स हैव परफॉर्म्ड. सो आई थिंक इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क गिवन काफी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है. सो अक्रॉस डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट फंड मैनेजर्स, वन शुड सेलेक्ट 3 से 5 या 7 फंड को सेलेक्ट करके उसमें एक सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्ट करना चाहिए और उसको रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए. एवरी ईयर शुड बी रिव्यूड.
एक लास्ट सवाल, मोस्टली ये बिहेवियरल इन्वेस्टिंग के ऊपर है. आज भी आपने कुछ चर्चा की इसके बारे में और आपने पहले भी बात की है, लिखा भी है, जानना चाहेंगे कि जो बायसेस हैं जो इन्वेस्टर्स के होते हैं नॉर्मली, बहुत सारे अभी उभर के आएंगे, लोगों ने बहुत सारी गलतियां उसके वजह से की होंगी, इस एनवायरनमेंट में उसे कैसे वो अवॉइड करें, कैसे वो इस सिचुएशन का स्टॉक लेते हुए ये देखें कि रैशनली वो डिसीजंस ले सकें और बायसेस ना आए बीच में।
हेलो,
या नीलेश जी, हाँ री रिकॉर्ड कर लेंगे। नीलेश जी, आखिरी सवाल, ये बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में, बिहेवियरल इन्वेस्टिंग के बारे में आपने अभी भी बात की और पहले भी बात करी है, लिखा भी है, कोई भी इन्वेस्टर बिना बायसेस के इन्वेस्टिंग नहीं करता, लेकिन कहीं कहीं लोग रैशनल होके सिचुएशन का स्टॉक ले लेते हैं और अपने बायसेस को पहचानते हुए वो अपनी गलतियां सुधार लेते हैं। इन हालातों में कोई कैसे अपने बायसेस का स्टॉक ले, कैसे जाने कि कहां पे वो गलतियां कर रहा है, अगर कोई गाइडेंस दे पाए आप इस पे।
देखिए, इसका थोड़ा लंबा वो मतलब काफी सारे बायसेस होते हैं, तो कोई एक को हाईलाइट करना ठीक नहीं है, बट एक पर्टिकुलर चीज जो काफी टाइम पे देखी कि ये पर्टिकुलरली जो इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं वो काफी ज्यादा फिक्सेटेड हो जाते हैं वो कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट से। तो बाजार को आपकी लागत जो स्टॉक आपने खरीदा है उसको पता नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं हमारी कॉस्ट को ऊपर आएगा तो ही हम बेचेंगे या उसके नीचे नहीं बेचेंगे, नॉट रियलाइजिंग कि बिजनेस की वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू चेंज हो गई है। ये है सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो आज की जो प्राइस है स्टॉक की वही आपकी कॉस्ट है, और बिजनेस की वैल्यू जो है उसका मूल्यांकन करना और दोनों में जो प्राइस और वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको रेगुलर ट्रैक करना चाहिए। तो आज के मार्केट में पर्टिकुलरली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि काफी क्वालिटी बिजनेसेस, हाई क्वालिटी बिजनेसेस बहुत अच्छे दाम पे मिल रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई स्टॉक्स हैं जहां पे भले आपके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ज्यादा है पर वो बिजनेस सही नहीं है, तो उसको करेक्ट करके वापिस अच्छे क्वालिटी बिजनेसेस में या अच्छे क्वालिटी फंड्स में इन्वेस्ट करके उसको रिव्यू करने के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है।
करेक्ट। नीलेश जी, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने समय निकाल के हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर करी, काफी इन्फॉर्मेटिव रहा है, बहुत शुक्रिया।
थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी, धन्यवाद।
म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।